मैं उस दौरान यतीम खाने में ड्राइवर था और तलत भी वहीं काम करती थी। वो बहुत मजलूम थी। शौहर से तलाक लिए हुए उसे 1 साल हुआ था। कहती थी कि शौहर ने उसकी बच्ची को कबूल नहीं किया, फिर उस बच्ची को खुद ही पाला। मैंने भी कहा, दूसरों की बच्ची मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझसे शादी करनी है तो इस बच्ची को यतीम खाने में छोड़ना पड़ेगा।
ये सब कुछ जेबा को बता चुका हूं, उसे अच्छी तरह याद है। खुदा के लिए इसे दोबारा मत सुनाओ। अगर जेबा यहां है तो सिर्फ इसलिए ताकि वो बात जो मुझे नहीं बताई तुमने उसे बता दो।
क्या बताऊं मैं?
इसका बाप, जेबा को बताओ इसका बाप कौन है।
मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं जानता।
अगर तुम नहीं जानते तो जेबा की अम्मी को झूठ क्यों बोला कि जेबा का बाप मिल गया और उसे जेबा चाहिए?
पैसों की खातिर वो ड्रामा भी इसीलिए किया, ताकि उससे मुझे भी कोई फायदा तो पहुंचे, क्योंकि मैं जानता था कि वह औरत सेवा को बहुत चाहती है, जितने पैसे मांगूंगा दे देगी। लेकिन मेरी बारी में वो होशियार हो गई थी, बच्ची को लेकर गायब हो गई और मुझे कभी नहीं मिले। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ।
वो इसलिए गायब हुए क्योंकि तुमने झूठ बोला कि जेबा का बाप अपनी बच्ची की तलाश में और उसे ढूंढ रहा है। उसका बाप तुम्हारी तरह लालची नहीं था, सिर्फ तुम्हारी खातिर उस बेचारी को सारी उम्र अपने गुनाह की फिक्र रही।
मेरी खातिर क्यों? इस सब में मेरी क्या गलती है बोलो?
तुम्हारी गलती है, उस मरहुमा ने तुम्हारे झूठ को सच मान लिया था।
अगर ऐसा ही है तो उन्होंने जेबा को छुपा के क्यों रखा? क्यों नहीं किया उसके बाप के हवाले? उसने भी तो गुनाह किया है, एक बच्ची को बाप से दूर रखकर।
हाँ ये बात भी थी, बाद में एहसास हुआ ऐसा क्यों किया, क्यों बच्ची वापस नहीं की।
मेहरदाद, तुम्हें ये सब कैसे पता?
तुम्हारी अम्मी ने हॉस्पिटल में बताया था। सिर्फ पैसों के लालच में उस औरत को तंग किया तुमने। अब क्या, अभी भी पैसों का लालच ही अपनी गलती का अजाला करना है?
तुम्हें बताया ना, पैसों की खातिर नहीं किया।
तो फिर किसके लिए है?
मैंने सिर्फ तुम पर जुल्म नहीं किया, अपनी बच्ची खातरा पर भी किया, तुमसे दूर रखकर।
किसने कहा कि ये मुझसे दूर है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये मेरी बहन नहीं है? आपकी मेरे बारे में ऐसी सोच क्यों है?
इन बातों का कोई फायदा नहीं, हम असल मौजू से दूर हो रहे हैं। एक लफ्ज बोलने के लिए इतनी शर्तें क्यों रखते हो तुम?
तुम क्यों डरते हो जनाब? जेबा ने अपनी बहन को इतनी मुद्दत के बाद देखा है, तुम क्यों इसे अपने दिल की बात नहीं करने देते? अगर हम रिश्तेदार बन रहे हैं तो तुम इस बात से क्यों डर रहे हो?
जी नहीं, डरता हूं इसे भी मेरी तरह परेशान करोगे और आखिर में कुछ नहीं बताओगे।
क्यों नहीं, मैं इसे इसकी माँ के बारे में बता रहा हूँ। क्या इसको अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानना?
इसकी माँ मर चुकी है, अगर जिंदा होती तब भी इसके बारे में कुछ नहीं बताते तुम।
जो ये पूछ रहे हैं आप इन्हें बताते क्यों नहीं? अगर वो नहीं चाहते तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना इनके साथ। अब्बू, मैं आपसे कह रही हूँ, बता दो इन्हें सब। मैं नहीं चाहती कि आए दिन हमारे घर में फसाद हो। आप नहीं बताते तो मैं बता देती हूँ।
मेरी बेटी ठीक कहती है, हम और आप एक जैसे नहीं और ना रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं मुफ्त में आपको कुछ नहीं दूंगा।
तो फिर कैसे दोगे?
हर चीज की एक कीमत होती है।
यकीन था मुझे कि तुम एक लालची इंसान हो।
मेहरदाद, एक मिनट रुको। तुम्हें उसकी कितनी कीमत चाहिए? कितनी?
मुझे इतना चाहिए कि जिससे मेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल हो जाए।
अच्छा ठीक है, तो इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी भर की गलतियां हैं जिसका अजाला हमें करना पड़ रहा है।
बस करो खुदा के लिए, मैं खुद उसकी मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं उसको नौकरी दे सकती हूँ, मसलन मैं उसको अपने साथ क्लिनिक ले जाऊंगी, अच्छी तनख्वाह दूंगी उसको।
हाँ ये ठीक है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है।
और चाहिए या शर्म आ रही है तुम्हें? जिस बाप को जिंदगी भर जेबा से दूर रखा उसकी कितनी कीमत चाहिए?
इतनी जिससे मेरी बेटी की जिंदगी गुजर जाए।
अजीब इंसान है,
मेहरदाद, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे?
नहीं, मैं तुम्हें इस आदमी के साथ तन्हा नहीं छोड़ सकता।
अच्छा ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ।
मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ये सब ड्रामा कर रहा है, मुझसे पैसे नहीं ले सका तो अब वो तुमसे ले रहा है। हाँ, कुछ लोगों के पांव कब्र में लटक रहे होते हैं लेकिन उनकी हवस खत्म नहीं होती, समझी? उनकी हवस खत्म नहीं होती। ज़िबो, उसकी बातों में हरगिज मत आना, वो धोखा दे रहा है। ये वही बंदा है जिसने तुम्हारी माँ से जुदा करके फरोख्त किया। तुम क्यों सोच रही हो वो बदल गया है?
मैंने ये कब बोला कि वो बदल गया है? मैं उस लड़की को इसके जुल्म से निकालना चाहती हूँ।
मैंने खुद तुम्हें इस मसले में फंसाया, खुद ही निकालूंगा, समझी? खुद ही निकालूंगा तुम्हें अब।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कदम उठा चुकी हूँ, अब पीछे नहीं हटाऊंगी।
लेकिन अगर वो हमें धोखा दे रहा और झूठ बोल रहा हो तो यकीन करो उसे कुछ पता होता तब तक बता चुका होता हमें।
अच्छा, मैं सोचती हूँ कि ये तो झूठ बोल सकता है मगर वो लड़की झूठ नहीं बोलेगी।
तुम्हें कैसे पता? तुम जानती हो उसे? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम्हारी बहन ही है? हाँ,
जाओ तुम गाड़ी में बैठो।
कहा ना तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता।
नहीं जाना?
नहीं।
तो मैं जाती हूँ, इस तरह हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा।
ज़िबा,
कहाँ चले? किसी शर्त के बगैर, पैसे भी नहीं चाहिए। सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं आज से। ये लो।
अब्बास मवद्दत,
दिखाना। अरे ये तो बर्थ सर्टिफिकेट है।
मेरे अब्बू का नाम अब्बास मवद्दत है।
क्या ये सारे नंबर इसी नाम से हैं?
नहीं, सिर्फ 5 हैं, बाकी सब अलग नामों से हैं। जैसे मवद्दत पूर, मवद्दत अब्बास। अब किस नाम से शुरू करूं? आखिर शुरू तो करना है ना।
अभी नहीं।
क्या मतलब?
ये सब अभी थोड़ी करना है, कल सुबह कंपनी जाके वहां से फोन करूंगा।
मैं कल तक कैसे रुकूं?
लेकिन ज़ेबा, तुमने इतने सालों सबर किया, एक दिन और सबर कर लो।
नहीं नहीं वो पहले वाली तस्वीर दिखाओ। और से देखो ये तस्वीर, बिल्कुल हमारे कालीन की तरह है, रंग डिजाइन सब कुछ वही है।
ये तस्वीरें मैं इसीलिए लाया हूँ कि हमें वहाँ दोबारा जाने की जहमत ना हो।
वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें ये तस्वीरें लेने कैसे थी?
मैंने उनसे कहा कि मुझे खरीदार को तस्वीरें दिखानी है ताकि वो कालीन पसंद कर सके।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम सौरभ, तुम बगैर बताए भी आने लगे।
अच्छा मैं अब चलता हूँ, मुझे अब इजाजत दीजिए।
बहुत शुक्रिया अबीर,
जी जी, खुदा हाफिज़।
याली मदद।
आप कैसे हैं सुराब साहब?
तुम्हारी दुआ से ठीक हूँ अभी तक। ये बेकार आदमी हबीब आपको अपने इन कामों से सिर्फ धोखा दे रहा है जनाब।
क्या फरमाया?
सईद साहब, ये सही है कि अल्लाह ने मुझे मेरी गलती की सजा दी और आप नादिर की वजह से हम लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन उस चालाक लड़के के धोखे में नहीं आना। उसने सारी उम्र حاجی عباس کی ملازمت کی ہے، وہاں ملازم رہا، آج اگر آپ نے اسے بلا لیا، چھوٹا سا کام دے دیا تو خود کو نہ جانے وہ کیا سمجھنے لگا،
جذباتی ہو گیا ہے وہ، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دن بھی اس نے آپ لوگوں کو غلط قالین دکھایا اور کہا کہ مجھے وہ قالین والی جگہ مل گئی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے سب۔
لیکن آپ ان باتوں کا برا کیوں مان رہے؟
میں برا نہیں مان رہا، میرا تو مطلب صرف یہ ہے کہ یہ لڑکا دھوکے باز ہے، نالائق انسان ہے۔ ابھی جب وہ آپ کو اپنا رنگ دکھائے گا تب آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔
لگتا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کس پریشانی سے گزر رہا ہوں، یا پھر اندازہ ہے؟ میں اس بازار کے تمام لوگوں کا مقروض ہوں، میں نے انہیں ایڈوانس چیک دیے، کہاں سے دوں گا پیسے؟ اب جواب دیں، کل آئیں گے، خود جواب دینا انہیں۔
مجھے یاد ہے منیرا نے کبھی میرے سامنے عباس مودت کا نام نہیں لیا تھا۔
یہ نام تو کبھی ان کی زبان سے میں نے نہیں سنا، لیکن ان کی وفات سے پہلے مجھے کہا کہ زیبا کے سرپرست ہونے کے بعد زیبا کے ستیلے باپ نے فون پہ بتایا کہ زیبا کا باپ مل گیا ہے اور اسے اپنی بیٹی چاہیے۔
عجیب ہے، یہ باتیں تو صرف میں ابھی آپ کے منہ سے سن رہا ہوں۔ اچھا بعد میں کیا ہوا؟
منیرا صاحبہ نے بتایا کہ زیبا کی محبت اور اسے کھونے کے ڈر سے کچھ ایسا کیا تاکہ کوئی بھی زیبا کو نہ چھین سکے ان سے۔
جہاں تک مجھے یاد ہے میری بہن منیرا نے ایک گھر لیا تھا لیکن اسے فروخت کر دیا، اس کے شوہر نے اسے وہ گھر بیچنے سے منع کیا تھا اور آخر کار بہت بحث کرنے کے بعد وہ اس گھر کو بیچنے میں کامیاب ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنا آفس بھی بدل لیا، اور اب میں نے یہ تمہارے منہ سے سنا ہے کہ وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہ رہی تھی۔
وہ اسی لیے زندگی بھر عذاب جھیلتی رہی، اپنے کام پر پچھتا رہی تھی، اس لیے مجھ سے کہا کہ زیبا کے باپ کی تلاش کرو، مجھ سے التجا کر رہی تھی۔
مہرداد صاحب، آپ چپکے چپکے ہسپتال جا کر جو میری بہن سے ان دنوں باتیں کرتے تھے وہ سب اسی کے متعلق تھی۔
تو آپ نے سوچا کہ وراثت کے لیے ہے؟
تو مجھے کیا پتا وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تمہیں وہاں دیکھ کر میں فکر مند ہو گیا تھا۔
نہیں، آپ بے فکر رہے ہیں، امید تھی کہ آپ میری مدد کریں گے ماموں۔
مجھے افسوس ہے کہ میں اس حوالے سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا بیٹا، کیونکہ ہماری بہن مرحومہ نے ہمیں ہمیشہ اجنبی سمجھا، جیسے یہ آج کی بات، ہمیشہ مجھ سے چھپایا اور کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اس دن بھی جب وہ زیبا کو ہمارے گھر لائی تھی، اس کے گھر والوں کے متعلق ایک لفظ نہیں بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم زیبا کی اصلیت کو بالکل فراموش کر دیں اور ہم مان لیں کہ زیبا اس کی بیٹی ہے۔
زیبا کو اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا۔
ٹھیک ہے، تو پھر زیبا کیوں اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہی ہے، جس کو نہ وہ جانتی ہے نہ پہچانتی ہے؟
کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے، تنہا ہو گئی ہے وہ۔
اس کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم جیسا شوہر اس کی زندگی میں موجود ہے، پھر وہ کیوں خود کو تنہا محسوس کر رہی ہے؟
کل اسے بتایا تھا کہ اگر چاہے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ہم، لیکن نہیں مانی وہ۔
تم یہ اسے دکھا دینا، اور تم یہ سب باتیں بھول جاؤ، کیونکہ میں اسے جانتا ہوں، وہ نہیں مانے گی۔
ہیلو،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
کیا یہ عباس مودت صاحب کا گھر ہے؟ ان سے بات ہو سکتی ہے؟
کام پر گئے ہیں، آپ کون؟
آپ مجھے نہیں جانتی، میں نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے کسی اور فیملی نے پالا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا نام عباس مودت ہے۔
کیا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟
جی، وہ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں، ان کا نام طلعت تھا۔
میرے شوہر تو طلعت نامی کسی کو نہیں جانتے۔
क्या आपको यकीन है कि उनका नाम तलत ही है?
जी जी, बर्थ सर्टिफिकेट में उनका यही नाम है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको जहमत दी।
कोई बात नहीं,
खुदा हाफिज।
हेलो।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
क्या ये अब्बास मवद्दत साहब का घर है? उनसे बात हो सकती है?
काम पर गए हैं। आप कौन?
आप मुझे नहीं जानती। मैंने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, मुझे किसी और फैमिली ने पाला है। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है कि मेरे बाप का नाम अब्बास मवद्दत है।
क्या आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया?
जी, वो मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। उनका नाम तलत था।
मेरे शोहर तो तलत नामी किसी को नहीं जानते। क्या आपको यकीन है कि उनका नाम तलत ही है?
जी जी, बर्थ सर्टिफिकेट में उनका यही नाम है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको जहमत दी।
कोई बात नहीं,
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना?
जी हाँ, हमारे यहाँ चंद लोग फोन करते हैं। क्या आपके वालिद मिल गए?
अभी नहीं, फोन डायरेक्टरी में से कुछ नंबर मिले हैं, अभी उनसे राब्ता किया है। कुछ नंबरों पर फोन किया था, मगर उनमें से कोई तलत नामी औरत को नहीं जानता। उनमें से कोई मेरे बारे में भी नहीं जानता।
इसका मतलब तुम नाउम्मीद हो गई?
बिल्कुल नहीं। देखें जलाल साहब, मैं समझती हूँ कि आप इससे ज्यादा मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे यकीन है मेरी अम्मी ने अब्बू के बारे में आपको कुछ बताया होगा।
औरतें तलाक लेने के बाद फिर कभी अपने पहले शोहर के बारे में बातें नहीं करती। अगर कहीं जिक्र भी करती हैं तो बुराई में करती हैं और अपनी ये बात छुपा कर रखती हैं।
देखें, अगर छोटी सी भी बात आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, उससे मेरी बहुत मदद होगी। मसलन क्या करते थे वो, कहाँ रहते थे या और कुछ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी भी और खातरा की भी। दरअसल मैंने अपने अब्बू को देखा नहीं है, लेकिन
अब मैं देखना चाहती हूँ।
अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे पास चली आना, अकेली आना। अपने शोहर को नहीं लाना, वो शोर करता है।
ठीक है,
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मेरी बच्ची, कितनी बार बोला है कि बस अपने काम से काम रखा करो।
अब्बू, इसे देखने देना।
अगर दिखा दिया तंग तो नहीं करोगी?
शायद।
जाओ अपना काम करो।
अब्बू,
मुझे कुछ
वादा करती हूँ।
जाओ जाओ,
मुझे देखो।
जाओ उसको,
मुझे देखो ना।
क्या है?
वादा करूंगी।
अच्छा ठीक है, मुंह उधर घुमाओ।
क्या?
क्यों और क्या मत करो, मैंने कहा मुंह उधर घुमाओ। चलो शाबाश। हाँ ऐसे, चलो अब यहां देखो।
ये क्या है?
ये है वो गुमशुदा बच्ची।
जहरा मवद्दत कौन है?
मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब्बास मवद्दत का नाम और टेलीफोन नंबर देखने के बाद मुझे पता चला।
अब्बास मवद्दत? अबू, ये अब्बास मवद्दत वही जेबा का बाप है ना?
पता नहीं, लेकिन जब मैंने इस नंबर पे फोन किया तो दूसरी तरफ से एक बंदे ने फोन उठाया, लेकिन सही जवाब नहीं दिया मुझे।
लेकिन ये तस्वीर वाली बच्ची जेबा नहीं है। अगर अब्बास मवद्दत कोई और है तो आपने ये, तो इसकी क्या अहमियत है? ये किसी काम का नहीं तो आपने संभाल के क्यों रखा है?
मैंने अखबार का ये टुकड़ा इसलिए संभाला, अगर कहीं ये लड़की हमें मिल गई तो ये तस्वीर हम उसको दिखा देंगे। क्यों?
बस कर दें अब्बू, अब आप जानते हैं कि वो उसका बाप नहीं। फिर
तुम्हें कैसे पता कि वो उसका बाप है कि नहीं? और हाँ, तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए और कहे कि खातरा मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोलो, ऐसा सोचा है कभी? तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझती हो, लेकिन हो नहीं। लाओ इधर, तो ये अब मेरे पास रहेगा।
अच्छा
क्या है?
जाती हूँ।
चलो।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अंदर आओ बेटा।
शुक्रिया, मुझे काम से जाना है।
बेटा खातरा घर में नहीं है, दुकानदार के पास गई है काम देने। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें ये दूं या नहीं दूं, लेकिन जब तुमने मुझे फोन किया और कहा कि अब्बू को ढूंढने में मेरी मदद चाहिए तो सोचा कि तुम्हें दे दूं। पता नहीं ये तुम्हारे काम आएगा या नहीं। ये लो, अब इसे तुम संभालो।
बच्ची कौन है?
पता नहीं, ये टुकड़ा इसलिए संभाला है कि इसमें अब्बास मवद्दत का नाम है। शायद ये तुम्हारा बाप ना हो, हो सकता है इतने सालों बाद वो मर चुका हो। बहरहाल पता नहीं, ये बहुत पुराना अखबार है, क्या कह सकते हैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जेबा, ठीक हो? देखो मैं भी टेलीफोन एक्सचेंज किया था, काफी ढूंढने के बाद उन्होंने कहा कि ये फोन नंबर कालीन के बाजार में तरंज नामी दुकान का है, लेकिन नंबर अब्बास मवद्दत के नाम से रजिस्टर नहीं हुआ है। अभी मैं उसी दुकान पर जा रहा हूँ, शायद कोई जानता हो। ठीक है ठीक है, तुम्हें बता दूंगा। खुदा हाफिज। सुनो बेटा, अब्बास मवद्दत की दुकान यही है?
नहीं, वो वाली है।
अच्छा सुनो, तुम्हें यकीन है कि वही दुकान है?
हाजी अब्बास को ढूंढ रहे हैं, वो वहीं होते हैं।
अच्छा सुनो, क्या तुम हाजी अब्बास को जानते हो?
आप क्या पुलिस वाले हैं?
पुलिस वाला? क्या तुम उनकी फैमिली को जानते हो?
मैं सिर्फ सईद साहब को जानता हूँ।
कौन सईद?
जी, यहाँ के मालिक हैं, हाजी अब्बास के साले।
उनका कोई साला भी है? क्या तुम उनकी दुकान का नंबर दे सकते हो? जेबा, जेबा कहाँ हो? जेबा भाई कहाँ हो? जेबा
क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो?
अस्सलामुअलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम।
खाना बनाया क्या?
आज कुछ बनाना था, क्या खबर है?
अच्छी खबर, एक शर्त से कहूँगा, ठंड होने से पहले ये पिज्जा खाते हैं।
काश तुम इससे भी मुश्किल शर्त रखते। अच्छा अब बताओ क्या खबर है।
तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे अब्बू क्या करते होंगे?
पिज्जा की दुकान में काम करते होंगे।
नहीं, सही से बताओ।
तुमने सही पूछा।
जाहिर है।
अच्छा, आज तुम कालीन के बाजार गए थे तो हो सकता है उनकी भी कालीन की दुकान हो।
शाबाश, सही कहा। अलबत्ता उम्मीद करता हूँ तुम्हारे अब्बू होंगे। बहुत उम्मीद है सेबा, समझी? बहुत उम्मीद।
मजाक मत करो ना।
मैं मजाक नहीं कर रहा। आज कालीन बेचने वाले अब्बास मौद्दत को ढूंढा, लेकिन तुम जैसे बिल्कुल नहीं थे वो।
उनसे बात हुई?
ये तो तुम्हारा काम है, तुम अपने अब्बू को ढूंढ रही हो, ना कि मैं।
मेहरदाद, खुदा के वास्ते बताओ।
अगर यकीन ना आए, वास्ता देने के बजाय ये लो नंबर पर बात करना। ये लो। ये लो। अभी क्यों कर रही हूँ? मैं बता रहा हूँ ना, अभी पूरा बाजार बंद है। आम तौर पर इस वक्त बाजार बंद होने का टाइम है।
अस्सलाम वालेकुम।
ये तुम्हारे लिए लाई थी।
अरे बहुत शुक्रिया। अंदर आओ, अंदर आओ।
मसरूफ हो क्या?
अरे नहीं मेरी बहन, वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। तुमने जहमत क्यों?
अरे नहीं, जहमत कैसी, ये क्या हुलिया बना रखा है
तुम देख रही हो ना सईद अखवान का क्या हाल हो गया है।
तुम्हारी अदाएं कम नहीं
हुई। हां ना, क्या करें, इस वक्त बहुत मजबूर हूँ मैं।
खाना खा लिया क्या तुमने?
कहाँ खाया खाना, आजकल तो वैसे भी मुझे खुद बनाना पड़ता है, और तुम तो जानती हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। आप बैठो।
तुम बैठो, मैं बर्तन धोती
हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठो, दो तीन बर्तन धो लेता हूँ।
घर की सफाई भी खुद करते होगे?
हाँ बस यही हाल है आजकल।
पजमान की कोई खबर आई?
तुम्हें नहीं पता क्या?
अरे हाँ, फोन आया था, पूछ रहा था। ठीक है, खुदा का शुक्र है, पहले इसने तुम्हारा हाल पूछा।
उसे मेरी फिक्र होती तो वापिस आ जाता अब तक।
मेरा दिल भी यही कहता है।
काश मेरा दिल भी यही कहता।
सईद, एक बात है, पता नहीं तुम्हें भूलूं के ना भूलूं। अब्बास को बताना था लेकिन नहीं बता सकी। मैं नहीं चाहती कि वो जहरा की याद में फिर परेशान हो जाए।
क्या हुआ, खैरियत तो है?
आज एक खातून का फोन आया था, कहा कि वो अपने बाप की तलाश में है, और उसके बाप का नाम भी अब्बास मुअद्दत है।
अच्छा, कब?
हाँ अभी आया था, लेकिन जब उसने कहा कि उसके माँ बाप बिछड़ गए और उसकी माँ मर गई, तो फिर मुझे सुकून मिला।
उसने यहाँ फोन क्यों किया, मतलब उसे यहाँ का नंबर कैसे मिला?
मुझे नहीं पता, मैं परेशानी में पूछना भूल गई।
ये भूलने वाली बात तो नहीं थी। अरे बाबा,
मैं क्या करती, मैं ये सब सुन के इतना परेशान हो गई कि मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और ये सब सुनने के बाद मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी।
अच्छा फिर क्या कहा?
बस यही कहा, लेकिन उस फोन के बाद मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या जहरा भी एक दिन ऐसे ही फोन करेगी?
अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा।
मैं देख रहा हूँ कई दिनों से बाजार वाले दबाव डाल रहे हैं कि जिस तरह भी हो सईद को जल्द अज जल्द कर्ज और चेक के पैसे अदा कर देने चाहिए। मैंने उन सबसे बात की है, लेकिन वो ज्यादा नहीं रुकेंगे। आप पहले सईद को समझाएं, बैठ के बात कर ले, मसला हल हो जाएगा।
हाजी साहब आपने बड़ी मेहरबानी की, माजी की तरह आज भी यही तरीका होना चाहिए। इस बाजार में अगर कोई मुश्किल में फंसे बाकी लोग उसकी मदद करते, अगर मदद न भी करें तो तंग उसको बिल्कुल नहीं करते।
मैं ये नहीं कहता कि बाजार वाले मदद नहीं करते, नहीं, अभी भी बहुत से लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद करते हैं, आप तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहां ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे से जलते हैं। मेरा मतलब, आप दबाव बढ़ने से पहले कुछ कर ले तो बेहतर होगा। मुझे आपकी इज्जत की बहुत परवाह है हाजी साहब। अलबत्ता मेरे पास जो सईद के चेक हैं वो मैं संभाल के रख लूंगा। डरता हूँ कि बाकी लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो काम खराब हो जाएगा।
ठीक है हाजी साहब, मैं आज ही सईद से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या सोचा है उसने।
मुझे लगता है वो तो आपकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक कह रहा हूँ ना? बाकी आप बेहतर जानते हैं। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हाजी साहब।
आप अंदर बैठे हाजी साहब,
फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हामिद इधर आओ।
जी हाजी साहब।
सईद के पास जाओ, उसको कहो मैंने बुलाया।
जी ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए।
माफ कीजिएगा, ये दुकान अब्बास मवद्दत साहब की है?
जी मवद्दत मैं हूँ, फरमाइए क्या काम है।
देखिए मुझे एक कालीन चाहिए था अभी।
आप मुझे कैसे जानती हैं? किसी ने भेजा आपको?
नहीं, बाजार में आप बहुत मशहूर है ना।
अच्छा जी, चलिए कालीन दिखाता हूँ आपको, जो पसंद आए मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ।
मेहरबानी आपकी।
जी वो भी आ रहे हैं।
ठीक है, तुम कहीं मत जाना।
जी बेहतर।
जी तो फिर कोई पसंद आया आपको?
जी
कालीन कुछ पसंद नहीं आया?
हाँ, दरअसल मैं कालीन खरीदने नहीं आई थी, मुझे आपके बारे में कुछ मालूम करना था।
हाँ बहुत खूब, अच्छा फरमाइए।
जी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ मैं। देखिए मैं एक साहब को ढूंढ रही हूँ, जो अलबत्ता हो सकता है कि नाम एक जैसे हों, और जिनकी मुझे तलाश है उनका और आपका नाम एक ही है।
मैं समझा, इसका मतलब यह है कि आप अब्बास मवद्दत की तलाश में हैं, है ना?
जी।
वो आपके क्या लगते हैं?
वालिद है मेरे।
यानी कि आप अपने वालिद को नहीं जानती?
जी नहीं जानती। जब मैं अपने माँ बाप से जुदा हुई तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं अपने अब्बू से नहीं मिली।
यानी आप अपनी माँ के साथ रहने लगी थी?
मैं 2 साल की थी जब मेरी वालदा फौत हुई, फिर मुझे किसी और खानदान ने गोद ले लिया। मेरे पास अभी भी वो सर्टिफिकेट मौजूद है जिसमें मेरे बाप का नाम लिखा हुआ है, अब्बास मवद्दत।
माफ कीजिए, आपकी पैदाइश कहाँ हुई?
तेहरान। क्यों क्या हुआ?
हाँ मेरा दिल चाहता था काश आप जैसी बेटी होती मेरी, लेकिन अफसोस है मैं वो बंदा नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रही हैं।
जानती थी वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे।
इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे, मैं आपकी कैफियत समझता हूं, लेकिन बहुत अजीब बात है मोहतरमा, आपकी तरह मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो तो बहुत अलग चीज है। मैं जंग के दौरान अपनी बेटी खो चुका हूं अबदान में। आप कभी अबदान रही हैं?
नहीं कभी नहीं रही मैं वहां। तो
अजीब बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है।
एक मिनट रुकी जरा। गुमशुदा बेटी ये है आपकी?
ये आपको कहां से मिला?
मैंने इस नंबर पर फोन किया फिर मैं यहां आई। मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी से मालूमात हासिल की, वहाँ से मुझे पता चला कि कई साल पहले ये कालीन की दुकान का नंबर था। देखें मेरी किस्मत, ये दुकान अभी तक मौजूद है।
जी, ये जगह मेरे साले की है, अलबत्ता पहले मेरे ससुर की थी, मैं भी उनके पास काम करता था, फिर मैं भी यहाँ काम करने लगा। आपने बताया नहीं आपको कहाँ से मिला?
ये एक लंबी कहानी है, माफ कीजिएगा, लगता है आपके कोई मेहमान आए हैं, मैं आपको और जहमत नहीं देना चाहूंगी।
नहीं मोहतरमा, कोई जहमत नहीं। सुनिए, ये अखबार ले लें।
इसे आप अपने पास ही रख लें। शुक्रिया।
इंशाल्लाह आपको आपके अब्बू मिल जाएंगे।
इंशाल्लाह आपको भी आपकी बेटी मिल जाएगी।
माफ कीजिए, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ?
ज़ेबा काव्यानी। खुदा हाफिज।
खुदा निगहबान।
ये कौन थी? वो यहां क्यों आई थी? ये क्या चीज है?
वो जो खातून अभी बाहर गई हैं, उन्हीं का है।
ये खातून कौन थी?
ये अपने गुमशुदा बाप की तलाश में थी।
बाप की तलाश में? ये तुम्हारी बेटी है क्या? ये अखबार कहां से आया? पूछा नहीं तुमने उससे?
बताता हूं तफसील से, बैठो।